आज की बात।
श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। श्रोताओं, आज हम भारत में चुनाव आयोग पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ रहें। श्रोताओं, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव के आयोजन के लिए किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इस आयोग के इतिहास में बहुत ही उतार चढ़ाव आए, किंतु हालिया दशकों में ये आयोग एक स्वतंत्र व स्वाधीन संस्था के रूप में स्वयं को मनवाने में सफल रहा है। मगर अब चुनाव के अवसर पर कई पक्ष उस पर सवाल उठा रहे हैं। द वायर के एक कार्यक्रम में प्रसिद्ध पत्रकार आरिफा खानुम ने तो ये मुद्दा उठाया कि लाखों लोगों के नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हैं। इस पर सबसे पहले खालिद सैफुल्ला ने अपने विचार प्रकट किए।
हमारी जो एनालिसिस है वो दो डेटाबेसेस को कंपेयर करने की एनालिसिस है। पहला डेटाबेस है सेंसस। सेंसस में एक रिपोर्ट है जिसका नाम है हाउस होल्ड साइज रिपोर्ट। वो रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में सिंगल पर्सन हाउस होल्ड्स, ऐसे घर जिसमें सिर्फ एक आदमी रहता है, वो सिर्फ 5% से कम है। तब हमने इलेक्शन कमीशन का पूरा डेटा, जो एक इमेज फॉर्मेट में रहता है, उस इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, टेक्स्ट से एक्सेल में कन्वर्ट किया और उस पर उसी तरह की रिपोर्ट बनाई जो सेंसस में थी। तो हमें ये पता लगा कि 10% घरों में सिर्फ एक ही आदमी, एक ही वोटर है। सेंसस कहता है 5% और इलेक्टोरल लिस्ट से जो डेटा, जो रिपोर्ट बनती है, वो कहती है 10%। और ताजुब ये दिखा क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम भी रहता है, गार्डियन नेम भी रहता है, तो हम लोग नाम से पता लगाते हैं कि उनका उनका रिलीजन क्या है, क्योंकि मुस्लिम नेम्स यूनिक होते हैं। तो मुस्लिम हाउस होल्ड्स में, जब ओवरऑल इंडिया के 10% घरों में एक ही वोटर थे, तो मुसलमान घरों में 17% घरों में एक ही वोटर है। तो फ़र्ज़ कीजिए, हो सकते हैं कि 4-5% सेंसस के हिसाब से घर में एक ही आदमी हो, सिंगल मदर्स है या सिंगल पेरेंट है, बट अगर मैं वो 17% में से 4% निकाल दूं, तो 12% घरों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब वहाँ पे वोटर मौजूद हैं लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। जब ये डेटा हमें मिला, हम लोगों ने एनजीओ से, तमाम इंडिया के एनजीओ जहाँ जहाँ हमारी पहुँचती उनको बोल उनसे रब्ता किया, उनसे कहें कि हम आपके पास आएंगे और हम हमारे डेटा को वेरीफाई करेंगे। तब हम डेटा को वेरीफाई करने के लिए थोड़े कॉन्स्टिट्यूएंसीज को गए, तो वहाँ पे हमने लोगों को पाया जिनके पास वोटर कार्ड था, जो 2014 इलेक्शन में वोट किए थे, अभी उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से वोटर लिस्ट में नाम गायब होने के दो मेन वजह हैं। पहली वजह है कि कुछ लोग शरारत करते हैं, क्योंकि फॉर्म 20 एक ऐसा फॉर्म है जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि इंडिया के कौन से पोलिंग बूथ में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितने वोट मिले थे। अब एज ए एग्जाम्पल ले लीजिए कि ओखला के गफ्फार कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 1 एक पोलिंग बूथ है, वहाँ के पोलिंग बूथ में कोई भी जाके पता कर सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं मिले। तो वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, जो जिनको बूथ मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई होती है, वो लोग करते ये हैं कि वहाँ के थोड़े घर आइडेंटिफाई करते हैं और उनके घर, उनके नामों पे फॉर्म 7 अप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं। फॉर्म 7 किसी का वोटर कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 6 होता है, किसी को वोटर कार्ड का नाम लिस्ट में से निकालने के लिए फॉर्म 7 होता है। तो अगर मैं आपके नाम से फॉर्म 7 फिल कर देता हूँ, तो होना ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के बूथ लेवल ऑफिसर्स आपके घर पर आए, वेरीफाई करें और उसके बाद अगर आप सही में वहाँ नहीं है तो आपका नाम निकाल दें, और हैं तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दें। बट ऐसा, क्योंकि बूथ लेवल ऑफिसर्स एक फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, वो कोई दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स से कनेक्शन है उनका डायरेक्ट उनका कनेक्शन इलेक्शन कमीशन नहीं है, तो उतना अथेंटिकेट वे में काम नहीं होता है। और हमने ये पाया है कि कभी कभी नाम निकल जाते हैं बगैर किसी वेरिफिकेशन के।
खालिद सैफुल्ला। NDTV के कार्यक्रम में चुनाव आयोग के सलाहकार SK मेहंदीरत्ता कहते हैं,
इलेक्शन को काम करना है, लेकिन कानून ने इलेक्शन कमीशन को पावर्स तो नहीं दी। कहा है ड्यूटी कि
कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ, लेकिन आपके पास कोई पावर नहीं है। और ये मॉडल कोड जो है, मॉडल कोड तो पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद बना के इलेक्शन कमीशन से कहा कि इसको लागू करिए। अब उनको सबसे पहली तो नैतिक जिम्मेवारी पॉलिटिकल पार्टीज की है, इन्होंने खुद मॉडल कोड बनाया, उसका उल्लंघन ना करें। लेकिन जब उल्लंघन करते हैं तो चुनाव आयोग के पास अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कोई खास ऐसी पावर नहीं है कि किसी को कह दे कि आप इलेक्शन ही लड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो अपने किसी को डिसप्लेजर कन्वे कर दे, किसी को सेंसियर कर दे, किसी को रिप्रीमेंड कर दे, ये हो सकता है। या वो जहां देखते हैं कि जो उल्लंघन हुआ है वो किसी कानून का भी उल्लंघन है तो वहाँ वो FIR वगैरह फाइल करवाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा FIR फाइल करने का मतलब वो मामला गया, असर होना है वो तो 13-14-15 दिन का ही होना है जब से पोलिंग से पहले। तो अगर वो बाद में चलता भी रहे, मुकदमे चलते रहे, तो क्या फर्क पड़ता।
इसी चर्चा में भाषा के एडिटर निर्मल पाठक का कहना था,
जैसे मेदिरत्ता जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास अपनी कोई जुडिशियल पावर या कानूनी अधिकार है नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन बैठे हैं इलेक्शन कमीशन में, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अब TN सेशन को हम सब लोग अभी तक क्यों याद करते हैं, और TN सेशन के बाद से हम लगातार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का दिन पर दिन हम सोचते हैं कि अब जो अगला आएगा वो शायद ठीक होगा, लेकिन जो आता है वो पहले वाले से भी ज्यादा। जो अभी योगी जी ने कहा मोदी जी की सेना, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि आगे से ध्यान रखें, इसमें एक कोई कड़ा संदेश नहीं दे सकता था इलेक्शन कमीशन, कुछ भी वो सेंसर कर सकते थे, ये तो एक एडवाइस जैसी हुई, उससे होता कुछ नहीं, पर एक मॉरल प्रेशर तो पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से अपने को कंडक्ट कर रहा है, उसमें भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और धीरे धीरे ये इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे असर डाल रही है ये चीजें, और इस बार के चुनाव में ये पहले दिन से इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से किया है उस पर आशंकाएं उठी हैं। चुनाव की घोषणा में देरी हुई, उसके बाद फिर जिस तरह से लगातार विज्ञापन चल रहे थे और प्रधानमंत्री जी जो अपने योजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे, घोषणाएं कर रहे थे, को लेकर के बहुत सारे सवाल उस समय भी उठे। फिर चुनाव शुरू हो गया, उसके बाद से लगातार हो रहे हैं, ये हर चुनाव में होते हैं, बहुत हर तरह की शिकायतें उसमें होते पहले से ज्यादा।
इस बारे में SK मेंदिरत्ता कहते हैं,
नहीं देखिए, जो भी चुनाव आयुक्त आता है उसको पता है कि मैं पब्लिक गेज में हूँ, सब जनता मेरे को देख रही है, और कोशिश तो हर एक की यही होती है कि भाई मैं अपनी इमेज ठीक रखूँ, और वो कोशिश यही करते हैं कि जहाँ तक हो सके मैं अपना काम ठीक करूं। अब ये जनता की, जैसे अब ये कह रहे हैं कि योगी जी के लिए कुछ ज़्यादा कड़े शब्द भी इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन जब कोई परवाह ही नहीं करता, अगर आप किसी को सेंसर भी कह देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और उन्होंने उनको कह दिया कि आपको आगे फ्यूचर में ऐसा मत करिए, तब भी उसके बाद में पहले भी हम लोग ऐसे ही करते थे, तो ये था कि वो उन पर असर होता था अपने, तो ये सोच के कि पब्लिक की ओपिनियन हमारे खिलाफ हो जाएगी। मॉडल कोड का जो रियल सैंक्शन थी ना पहले, अभी भी बस वही है क्योंकि कानूनी तो है नहीं, तो पब्लिक ओपिनियन जो है वही सैंक्शन है। अब वो लोग पब्लिक ओपिनियन की परवाह नहीं करते हैं, ठीक है करने दो, कर लेंगे जो क्या। अगर मान लीजिए पहले किसी टाइम पर हमने ये कि भाई मॉडल कोड को एक जो है लीगल सैंक्शन दी जाए, लेकिन बाद में फिर इलेक्शन कमीशन ने और हमने खुद ही ये सोचा कि अगर उसको आप मॉडल कोड को लीगल सेंक्शन देंगे तो क्या करेंगे, इलेक्टोरल ऑफेंस बनाएंगे। इलेक्टोरल ऑफेंस का मतलब ये है कि आप वहाँ FIR फाइल करेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे पुलिस के पास, फिर वो केस तो चला गया। और मॉडल कोड का वैल्यू क्या है, सिर्फ 13-14 दिन कैंपेन पीरियड है, और अगर उसमें कुछ नहीं हुआ और मैजिस्ट्रेट ने लेके नोटिस दे दिया और 20 दिन के बाद की डेट दे दी तो क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन ये बात है कि अगर कोई लीगल सेंक्शन देनी है तो वो इलेक्शन कमीशन को पावर दीजिए, फाइन की पावर दीजिए, उनको कुछ जो है वो किसी सजा, वो पावर तो मिलेगी नहीं।
निर्मल पाठक का कहना है,
आचार संहिता बनाई तो पॉलिटिशियंस नहीं है, जैसा कहा सर ने भी कि उन्होंने बना के और इलेक्शन कमीशन को दिया है। अब ये इसको मानना नहीं मानना भी पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है, और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जब तक वो खुद ही इसको नहीं मानते हैं तो कोई दूसरा उसमें क्या कर लेगा। जब तक ये गठबंधन की सरकारें, एक जो गठबंधन की सरकारों के नहीं, जो देश के लिए कहा जाता है कि वो ठीक नहीं है, उसके लिए एक तर्क ये उसमें है कि गठबंधन की सरकारों पे मेरे ख्याल से ज्यादा प्रेशर रहता है इस तरह की चीजों को मानने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, बजाय जो पूरी मेजोरिटी से आते हैं। आप देख लीजिए पिछले 5 साल में क्या हुआ है ना, किसी भी उसके क्षेत्र में जाके, और अभी क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं सब लोग। तो जब तक पब्लिक इसको, वोटर इसको ठीक से नहीं समझेगा कि ये क्या।
और अंत में खालिद सैफुल्ला की बात सुन लें।
देखिए, गुजरात में जो 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पे बीजेपी ने 3000 के कम मार्जिन से जीते थे, वहाँ के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेके हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। मिसाल के तौर पे गोधरा एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिनमें बीजेपी की विनिंग मार्जिन थी 258 वोट्स। वहाँ की पूरी इलेक्टोरल लिस्ट हम लोग डाउनलोड किए, उसे एक टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, फिर उसमें मुस्लिम नेमों को टिक किया, तो हमने ये पाया कि 1800 मुसलमान घरों में एक ही वोटर था। तो इसका मतलब, क्योंकि इलेक्शन हो चुके थे, हम लोगों ने जाके वेरीफाई नहीं किया क्या सही में है। तो फिर उसके बाद कर्नाटका का इलेक्शन हुआ, कर्नाटका का इलेक्शन पे हम लोगों ने पूरे कर्नाटक के इलेक्शन की एनालिसिस की। वहाँ हमें ये पता लगा कि 18 लाख मुसलमान घर कर्नाटक में ऐसे मिले जिनमें सिर्फ एक ही वोटर था। तो मसला का हल ढूंढना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम लोगों ने एक ऐप बनाया जिसका नाम है मिसिंग वोटर ऐप। लोगों को कहा कि आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूरे पोलिंग बूथ उसमें दिख जाएंगे।
श्रोताओं, भारत विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। स्पष्ट सी बात है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र केवल इसलिए नहीं कि वहाँ सबसे अधिक वोटर है, बल्कि इसलिए भी है कि वहाँ प्रजातंत्र के सिद्धांतों का मजबूती के साथ पालन किया जाता है। आशा है कि भारत की ये छवि हमेशा बनी रहेगी।